नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन्यजीव संरक्षण में, खासकर मानव वन्यजीव संघर्ष से प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय समुदायों को सक्रिय भागीदार बनाने पर जोर दिया। प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन 1905 में 180 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों के समाधान के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। राज्य में अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 6 लोगों की मृत्यु और आदि कैलाश में 56 दिनों में पहुंचे रिकॉर्ड 22,307 यात्री। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आशुतोष सुनियाल और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में आज देहरादून में हाथी परियोजना की 21वीं संचालन समिति की बैठक हुई। बैठक में मानव हाथी संघर्ष पर जोर दिया गया। केंद्रीय मंत्री ने वन्यजीव संरक्षण में, खासकर मानव वन्यजीव संघर्ष से गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय समुदायों को सक्रिय भागीदार बनाने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रमों की सफलता के लिए मानव वन्यजीव संघर्ष के प्रभावी प्रबंधन को महत्वपूर्ण बताया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भारतीय वन्यजीव संस्थान और राज्य वन प्रशिक्षण संस्थानों को जागरूकता और आउटरीच कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने रेल दुर्घटनाओं के कारण हाथियों की मौतों पर डेटा के व्यवस्थित संग्रह और विश्लेषण की आवश्यकता, राज्य संस्थानों और विशेषज्ञों के बीच ज्ञान साझा करने के महत्व पर भी जोर दिया। बैठक में केंद्रीय मंत्री ने एशियाई हाथी ट्रेन टकराव को कम करने के तरीकों पर एक रिपोर्ट जारी की। इस अवसर पर असम, छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों के लिए मानव हाथी संघर्ष शमन उपायों पर एक रिपोर्ट जारी की गई। साथ ही दांतों की छटाई पर एक सलाह भी जारी की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन 1905 में 180 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों के समाधान के लिए विशेष अभियान चलाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री आज सचिवालय में सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने 6 महीने से अधिक लंबित शिकायतों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रकरणों का समयबद्धता से निस्तारण नहीं करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने शिकायतकर्ताओं से फोन पर बात कर उनका फीडबैक भी लिया। सीएम हेल्पलाइन पर शिकायतों के निस्तारण में अच्छा कार्य करने पर मुख्यमंत्री ने परिवहन, कृषि, समाज कल्याण, आबकारी और ऊर्जा विभाग की सराहना की। श्री धामी ने एक दिन पूरे राज्य में तहसील दिवस का आयोजन करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री तहसील दिवस के दिन किसी एक जिले में औचक रूप से भाग लेंगे। इसी तरह एक दिन पूरे राज्य में थाना दिवस का आयोजन भी किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने आज हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में 3 नए आंगनबाड़ी केंद्रों के नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र कोई सामान्य भवन नहीं है, बल्कि बच्चों को स्वस्थ, शिक्षित और संस्कारी बनाकर उत्तराखंड के भविष्य को संवारने का माध्यम भी है। उन्होंने कहा कि सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर व्यवस्थाएं प्रदान करने के लिए लगातार प्रयासरत है। श्रीमती आर्या ने कहा कि इन आंगनबाड़ी केंद्रों की सुविधाओं को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा अभिभावक अपने बच्चों को भेजेंगे। साथ ही गर्भवती महिलाएं भी इन केंद्रों से जुड़कर सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सकेंगी।
मुझे आज बताते हुए खुशी हो रही है कि अपने शहरी क्षेत्र में, चाहे वो सुभाष नगर का हो, राजेंद्र नगर का हो, दोनों आंगनबाड़ी केंद्र जहाँ पे टॉयलेट से लेकर, स्टोर रूम से लेकर, किचन से लेकर, एक छोटे ऑफिस से लेकर, हॉल से लेकर, एक प्रॉपर एक्सटेंडेड जो है आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो बनाया गया, आज का हमने लोकार्पण किया है। निश्चित रूप से उसमें बच्चों की संख्या भी अच्छी है और आने वाले समय में बच्चों की संख्या और वृद्धि होगी। तो आज ये लोकार्पित हुए आंगनबाड़ी केंद्र जनमानस को समर्पित किया गया है। इन भवनों को देखते हुए, सुविधाओं को देखते हुए पेरेंट्स जो है अधिक से अधिक बच्चे और गर्भवती गर्भधात्री जो है इन केंद्रों से जुड़कर सरकार की योजनाओं से लाभ।
हल्द्वानी नगर निगम शहर में अलग अलग स्थानों पर ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रहा है। निगम के अधिकारियों ने इसके लिए जमीन की खोजबीन भी शुरू कर दी है। परिवहन निगम के अनुसार हल्द्वानी शहर में 4,000 से ज्यादा ई रिक्शा पंजीकृत हैं। वहीं 200 से अधिक दुपहिया इलेक्ट्रॉनिक वाहन हैं, जिन्हें चलाने के लिए चार्ज करने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में शहर में ई चार्जिंग स्टेशन नहीं होने के कारण कई बार इन वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। नगर आयुक्त ऋचा सिंह का कहना है कि जल्द ही निगम सार्वजनिक ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगा। उधर परिवहन निगम हल्द्वानी से नैनीताल के लिए जल्द ही टेम्पो ट्रैवलर सेवा शुरू करने जा रहा है। निगम के सहायक महाप्रबंधक संजय पांडे के अनुसार प्रदेश सरकार ने राज्य के कुछ डिपो में यह नई सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। इसमें हल्द्वानी भी शामिल है। हल्द्वानी डिपो सबसे पहले हल्द्वानी और नैनीताल के बीच इसकी शुरुआत करेगा। यह प्रयोग सफल रहने पर इन्हें दूसरे मार्गों पर शुरू किया जाएगा।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
प्रदेश में आज अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 6 लोगों की मृत्यु हो गई जबकि 9 अन्य घायल हो गए। रुद्रप्रयाग जिले के घोलतीर में आज सुबह एक यात्री वाहन के अलकनंदा नदी में गिरने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई। दुर्घटना में लापता 9 लोगों की खोजबीन के लिए राहत और बचाव अभियान जारी है। लापता लोगों की तलाश के लिए अलग अलग स्थानों पर वॉचर के माध्यम से निगरानी के साथ ही उन्नत तकनीक का भी सहयोग लिया जा रहा है। वहीं रेस्क्यू किए गए 8 लोगों में से 3 गंभीर घायलों को हेली एम्बुलेंस से एम्स ऋषिकेश भेजा गया जहाँ उनका उपचार चल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि SDRF सहित अन्य बचाव दलों द्वारा युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। उधर देहरादून जिले के कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर जजरेड के पास एक कार के खाई में गिरने से 3 युवकों की मृत्यु हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची SDRF और रेस्क्यू टीम ने शवों और घायल को खाई से बाहर निकाला। उधर चमोली जिले में ज्योतिर्मठ नीति मोटर मार्ग पर झेलम और भापकुंड के बीच दुर्घटनाग्रस्त कार से पुलिस और SDRF की टीम ने आज 2 युवकों के शव बरामद किए। जानकारी के अनुसार दोनों युवक स्थानीय थे जो 22 जून की शाम को अपनी कार से वापस आ रहे थे लेकिन घर नहीं पहुंचे। खोजबीन करने के बाद आज दोनों के शव खाई में दिखाई दिए। नए धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में उभर कर सामने आए आदि कैलाश क्षेत्र ने इस बार यात्रा में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस बार मात्र 56 दिनों में ही 22,307 श्रद्धालु आदि कैलाश के साथ ही ओम पर्वत के दर्शन कर चुके हैं। इससे पहले के 2 वर्षों में कुल 39,502 श्रद्धालुओं ने ही आदि कैलाश यात्रा की थी। सामान्यतः आदि कैलाश यात्रा का संचालन 1 मई से अक्टूबर नवंबर तक ही होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 अक्टूबर 2023 को आदि कैलाश पहुंचने के बाद इस धार्मिक पर्यटन स्थल को देश के साथ ही पूरे विश्व में एक विशेष पहचान मिली जिसके बाद से ही यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पर्यटन विभाग के अनुसार वर्तमान स्थिति को हुए इस साल आदि कैलाश में 1.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस बार कैलाश मानसरोवर यात्रा भी 30 जून से शुरू हो रही है और यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं का गुंजी में 2 दिवसीय विश्राम होगा। इस संबंध में पर्यटन विभाग का कहना है इस बार कैलाश मानसरोवर यात्री भी आदि कैलाश यात्रा के दर्शन करेंगे। पौड़ी की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने खोलाचौरी क्षेत्र में राजस्व कार्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पंजिकाएं व्यवस्थित रखने, अतिक्रमण सूची बनाने और रोस्टर चस्पा करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अतिक्रमण की सूची तैयार करने और 15 अगस्त से पहले गांव-गांव जाकर लोगों के दाखिल खारिज की कार्यवाही पूरा करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कोट विकासखंड के खोला गांव में जल जीवन मिशन से संबंधित कार्यों का निरीक्षण भी किया। गांव में पाइपलाइन खुले में छोड़े जाने पर नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी ने 3 दिन के भीतर पाइपों को भूमिगत करने के निर्देश दिए।
जो पूरी प्रशासनिक टीम थी सभी के साथ हम लोगों ने खोलाचौरी गांव है यहाँ पौड़ी में उसका निरीक्षण किया और वहाँ पे लोगों से भी बातचीत करी। लोगों के घर में भी जाकर हमने नलों का कनेक्शन को देखा तो नल तो लग गए थे 8 महीने पहले लेकिन वहाँ पे भी पानी का प्रवाह नहीं हुआ है, तो जिसके लिए XCN को भी निर्देशित किया गया है कि 3 दिन के अंदर दोबारा से पूरा काम शुरू करें और अगर नहीं करा जाता तो उन पर विभागीय कार्रवाई भी और जो संबंधित ठेकेदार हैं उन पर भी ब्लैक लिस्टिंग आदि की कार्रवाई की जाएगी। और साथ में वहाँ पे जो पाइपलाइंस थी वो कुछ सड़क के ऊपर भी दिख रही थी तो उनको भी अंडरग्राउंड करने के लिए निर्देशित किया गया है।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर निर्धारण के खिलाफ दायर विभिन्न याचिकाओं की आज सुनवाई हुई। न्यायालय में सरकार की ओर से आरक्षण का रोस्टर कोर्ट में पेश किया गया जिस पर याचिकाकर्ताओं ने अध्ययन के लिए समय मांगा। न्यायालय ने सुनवाई की तिथि कल 27 जून निर्धारित की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन्यजीव संरक्षण में खासकर मानव वन्यजीव संघर्ष से प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय समुदायों को सक्रिय भागीदार बनाने पर जोर दिया। प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन 1905 में 180 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों के समाधान के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। राज्य में अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 6 लोगों की मृत्यु और आदि कैलाश में 56 दिनों में पहुंचे रिकॉर्ड 22,307 यात्री। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।